हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 31 अगस्त 2026, महीने का आखिरी दिन सोमवार हो गया। हिंदी तिथि भाद्रपद महीना कृष्ण पक्ष तृतीया रहेगी सुबह 9 बजे तक, लेकिन उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में, देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो देखिये दोस्तों, एक तो आज जो चतुर्थी तिथि है वो हेरम्ब संकष्टी चतुर्थी तिथि के रूप में मनाई जाती है। श्रावण मास खत्म होने के बाद आने वाली ये पहली चतुर्थी तिथि के मौके पर भगवान गणेश की पूजा और चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है। माताएं बहने आज के दिन व्रत वगैरह भी रखती हैं। तो वैसे इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि कब रहेगी संकष्टी चतुर्थी, मतलब आज 31 अगस्त को या कल 1 सितंबर को रहेगी। तो ज्यादातर पंचांग के मुताबिक आज ये चतुर्थी तिथि का व्रत माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में, कुछ और आज के बड़े इवेंट देखिए। राजधानी दिल्ली में SIR के बाद अब आज 31 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी। तकरीबन 1.5 करोड़ मतदाताओं में से 48 लाख वोटर्स गायब है, तो दोबारा नाम जुड़वाने का भी मौका मिलेगा घर घर सत्यापन अभियान के माध्यम से। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट आ रहा, आज 31 अगस्त के बाद फिर ITR रिटर्न भरने पर आपको ज्यादा जुर्माना, ज्यादा फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस और प्रोफेशनल टैक्स पेयर्स के लिए आज की तारीख काफी अहम है। आज 31 अगस्त को लास्ट डेट है इनकम टैक्स रिटर्न की, डेडलाइन चूकने पर ₹5,000 तक लेट फीस लग सकती है। वहीं खबर है, गोवा विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र आज 31 अगस्त से शुरू होगा। धर्मांतरण रोधी विधेयक भी पेश किया जाएगा इस मानसून सीजन में। और जम्मू कश्मीर के मेडिकल इंटर्न आज 31 अगस्त से हड़ताल की चेतावनी दिए हैं। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर ये आज 31 अगस्त से आंदोलन की चेतावनी दी है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। वहीं सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा, इंडिया पोस्ट के GDS के 24,000 से भी ज्यादा पदों के लिए आज 31 अगस्त से आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लास्ट डेट रहेगी 19 सितंबर। 10वीं पास युवा भी इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। इंडिया पोस्ट के ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल PDF नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। और खबर है, UP बनारस BHU में दाखिला वापस लेने पर भी अब आपको ₹1,000 का शुल्क तो देना पड़ेगा प्रोसेसिंग फीस के रूप में। 31 अगस्त के बाद से आज से ये नियम बदलने जा रहा है, नया नियम लागू हो जाएगा। वहीं भारतीय नौसेना के लिए अच्छी खबर है, आज 31 अगस्त को नौसेना में शामिल होगा निस्तार श्रेणी का ये दूसरा गोताखोरी सहायता पोत निपुण। तो इससे हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ेगी। वहीं LPG गैस सिलेंडर के लिए EKYC करवाने की आखिरी तारीख भी आज 31 अगस्त है। तो जिन लोगों ने अभी तक भी अपने गैस सिलेंडर की KYC नहीं करवाई है, तो जल्दी से KYC अपडेट कर ले, आज लास्ट डेट है। गैस कंपनियां आम यूजर्स उपभोक्ताओं को मैसेज भी भेज रही है। HP इंडियन भारत गैस, जिस भी कंपनी का आपके पास LPG कनेक्शन है, उनके मोबाइल ऐप के माध्यम से इन स्टेप्स को फॉलो करके आप घर बैठे ही EKYC कर सकते हैं। और 12वीं के स्टूडेंट के लिए भी अपडेट आ रहा, CBSE के 12वीं सप्लीमेंट्री का शेड्यूल जारी हुआ, आज 31 अगस्त को मिलेगी आंसर कॉपी भी। वहीं देखिए, पेट्रोल पंपों पर इथेनॉल लेबलिंग के मामले को लेकर आज 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में ये कहा गया कि पेट्रोल पंपों पर फ्यूल में यानी पेट्रोल में कितना इथेनॉल मिलाया जा रहा है, इसकी मात्रा बताई जाए। तो इस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 26,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले पर भी आज 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं अलग अलग राजनीतिक दलों के नगद चंदे की वैधता पर भी आज इस मामले पर 31 अगस्त को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जो पॉलिटिकल पार्टियां BJP कांग्रेस वगैरह नगद में चंदा लेती है ना, तो इस मामले पर सुनवाई होगी। और बिहार में भी नौकरी का सुनहरा मौका, आज 31 अगस्त को जॉब कैंप यानी रोजगार मेला लगने जा रहा, 100 पदों पर भर्ती होगी। नालंदा के बेरोजगार युवाओं के लिए अपडेट है। वहीं मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी देखिए, आज 31 अगस्त को अगले 14 घंटों के अंदर देश के 19 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट रहेगा। आगे अपन देखेंगे और भी किन किन राज्यों में बारिश वगैरह की चेतावनी है, पूरे मौसम समाचार जानेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर, भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी उज्बेकिस्तान के दौरे पर गए, यहां उन्हें उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला और PM मोदी को मिलने वाला अब तक ये 36वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इसके अलावा भी भारत और उज्बेकिस्तान दोनों देशों के बीच यूरेनियम सप्लाई पर भी बातचीत हुई। PM मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ और यहां भारत वंशियों के साथ काफी टाइम स्पेंड किया, ये कुछ मोमेंट्स की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और देखिए, उज्बेकिस्तान में PM मोदी को महिलाओं ने राखी भी बांधी, वहां के राष्ट्रपति मिर्जी योवेव के साथ एक ही कार में रवाना हुए PM मोदी। इस दरमियान भारत और उज्बेकिस्तान दोनों देशों ने खनिज संसाधन समेत टोटल 11 क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। अब उज्बेकिस्तान से भारत को यूरेनियम मिलेगा और उज्बेकिस्तान में भारत के UPI पेमेंट सिस्टम से ऑनलाइन पेमेंट भी किया जा सकेगा। इसके अलावा भी PM मोदी की यात्रा में टोटल 11 ऐतिहासिक समझौते हुए, 5 बड़े ऐलान किए, यूरेनियम से लेकर डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत भारत उज्बेकिस्तान दोनों देशों के बीच $5 अरब के व्यापार का रोडमैप तैयार हुआ है। ये देख सकते हैं आप कुछ डेटा भी, भारत उज्बेकिस्तान दोनों देशों के बीच यूरेनियम कारोबार किस लेवल पर चल रहा है और क्या कुछ नए समझौते हुए किन किन क्षेत्रों में, इस बारे में भी जानकारी आप चेक कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला, इसको लेकर PM मोदी बोले कि यह 140 करोड़ भारतीयों का गौरव है। अभी आपको पता होगा PM मोदी 4 दिन के विदेश दौरे पर हैं, टोटल 2 देशों के दौरे पर गए, तो उनका उज्बेकिस्तान का दौरा समाप्त हो चुका है। अब आज 31 अगस्त को वो किर्गिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं, उज्बेकिस्तान की यात्रा पूरी करके। तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंचे पीएम मोदी। यहां भी भारतीय समुदाय के लोगों ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और अब यहां बिश्केक में एससीओ समिट में भी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी 26वें इस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। तो आज और कल 31 अगस्त 1 सितंबर दो दिन किर्गिस्तान के दौरे पर रहेंगे। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार का प्लान है। 5700 बसों की कमी दूर होगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग पॉइंट्स भी 4 गुना तक बढ़ाए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने 2026-27 तक ये प्लान किया। पीएम 2.5 और पीएम 10 कम करने का महत्वाकांक्षी एक्शन प्लान बनाया है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ाए जाएंगे, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा वगैरह वगैरह। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर जो विरोध प्रदर्शन हुआ, इस दरमियान आंदोलन में एक लड़की ने जो पीएम मोदी को उल्टे सीधे शब्द बोले थे, तो अब उस लड़की ने वीडियो जारी करके एक संदेश दिया। पीएम को गाली देने वाली लड़की बोली कि मेरी जिंदगी नर्क बनी, चेहरा छिपाती घूम रही हूं। जेएनजी प्रोटेस्ट में पीएम मोदी को आपत्तिजनक शब्द बोले थे इस लड़की ने, तो इसके जवाब में पीएम मोदी ने भी रील बनाकर कहा था कि मुझे जंतर मंतर पर गालियां दी, मेरी माँ को आप शब्द कहे, ये गुमराह बच्चे हैं। और पीएम मोदी ने इन्हें माफ भी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद लड़की को अब काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो पोस्ट करके उन्होंने ये बात की जानकारी दी है। वहीं खबर है दोस्तों, कल 1 सितंबर से एलपीजी रसोई गैस से लेकर सीएनजी पीएनजी तक कई सारे नियम बदल जाएंगे। सितंबर की पहली तारीख में कई सारे नए नियम बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, तो इनके बारे में विस्तृत जानकारी डिटेल में वीडियो आज दिन में मैं आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर अलग से बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर। सरकार ने एक नया आदेश जारी किया। मार्च 2027 से देश की सभी संस्थाओं में आईएसटी का पालन करना अनिवार्य होगा। आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय का उपयोग करना अनिवार्य होगा मार्च 2027 से ही। यानी इंटरनेशनल लेवल पर क्लॉक वगैरह इस्तेमाल नहीं की जा सकेगी। अब जो भी समय टाइमिंग होगी वो आईएसटी के अकॉर्डिंग होगी, किसी और समय का संदर्भ इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ये सरकार की तरफ से नए नियम का ऑर्डर भी जारी कर दिया है। और अगली खबर देखिए, बीते दिन जो नीट पीजी का पेपर था उसमें भी कुछ कॉन्ट्रोवर्सी और कुछ गड़बड़ियां देखने को मिली। हालांकि पेपर लीक वगैरह नहीं हुआ, लेकिन बावजूद उसके नीट पीजी 2026 का एग्जाम 2 सेंटर पर रद्द हो चुका है, क्योंकि कैंडिडेट्स ने आरोप लगाया कि 2 घंटे में 10 बार परीक्षा रुकी। फिर बच्चों की शिकायत करने पर उन्हें एफआईआर की धमकी वगैरह भी मिली। कल जो नीट पीजी की परीक्षा आयोजित की गई, इस दरमियान कुछ एग्जाम सेंटर्स पर ये टेक्निकल गड़बड़ी सामने आई है। एक तो राजस्थान की राजधानी जयपुर के सीतापुरा में एक एग्जाम सेंटर पर तो बार बार कंप्यूटर बंद हो रहे थे, इस वजह से स्टूडेंट की परीक्षा प्रभावित हुई। बच्चों का आरोप है कि 2 घंटे में 10 बार परीक्षा रुक गई, कंप्यूटर सही से नहीं चल रहे थे। तो इस टेक्निकल प्रॉब्लम के बाद जयपुर में नीट पीजी एग्जाम के दौरान स्टूडेंट का हंगामा भी देखने को मिला। बार बार बंद हुए कंप्यूटर, दावा किया जा रहा है कि 2 घंटे में 10 बार पेपर रुका, तो इन एग्जाम सेंटर पर अब फिर से होगी परीक्षा। परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी का कहना कि अब 5 सितंबर को री एग्जाम होगा, यहाँ राजस्थान जयपुर के इस सेंटर में भी। और यहाँ कहाँ NBEMS ने दोबारा परीक्षा की घोषणा की है, तो जानकारी आप चेक कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट के CJI सूर्यकांत बोले कि गंभीर मामलों में न्यायपालिका संसद का इंतजार नहीं करती है। डिजिटल अरेस्ट के मामले पर खुद संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को ऐसी घटनाओं पर कठोर कानून बनाने के लिए कहा है, क्योंकि आजकल अक्सर आए दिन हमारे देश में डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं देखने को मिलती रहती है, जिसके माध्यम से लोगों के साथ साइबर फ्रॉड होता है, उनसे धमकी देकर पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। तो इन मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के CJI ने कहा कि स्वतः सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र सरकार को सख्त कानून बनाने का निर्देश भी जारी कर दिया है ऐसा। और पॉलिटिक्स से खबर देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी बोली कि सरकार हमसे अधूरे वादे करके बच नहीं सकती है। CJP का कहना कि 3 मांगे अभी भी अधूरी हैं। तो अब 5 सितंबर को CJP ने दिल्ली में फिर से मार्च आंदोलन की चेतावनी दी है। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कॉकरोच जनता पार्टी का ये कहना है कि जब आंदोलन खत्म किया उस दरमियान जो सरकार ने प्रॉमिस किए वो वादे प्रॉमिस अभी तक भी पूरे नहीं हुए हैं। ये 3 मांगे अभी भी अधूरी हैं। छात्रों के परिवारों को मुआवजा नहीं मिला है, कई सारे छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR भी नहीं ली गई। और तीसरी मांग है दिल्ली पुलिस और RAF माफी मांगे स्टूडेंट्स से। तो इन 3 मांगों को लेकर 5 सितंबर को फिर से दिल्ली में मार्च निकालने वाली है कॉकरोच जनता पार्टी ऐसा। वहीं देखिए, बीते दिन पीएम मोदी ने मन की बात के एपिसोड को संबोधित किया। 137वां एपिसोड था ये। इसमें पीएम बोले कि देश के युवा नशा मुक्ति थीम पर कंटेंट बनाएं। इस बार 8 करोड़ लोगों ने तिरंगा सेल्फी अपलोड की। देश में एवोकाडो की मांग भी बढ़ी है। अमरनाथ यात्रा को लेकर भी जिक्र किया पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में। वहीं देखिए, RSS प्रमुख मोहन भागवत अमेरिका के न्यूयॉर्क दौरे में हैं और यहाँ अपने संबोधन में वो बोले कि भारत के DNA में एकता और विविधता है। हम अलग अलग होकर भी एक दूसरे से जुड़े हैं। गलत सोच इंसान को जानवरों के करीब ले जाती है। ये बातें कही उन्होंने अपने संबोधन में न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दरमियान। और भारतीय सेना का एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए, 18,600 फीट की ऊंचाई पर एक मरीज को बचाया। इसका वीडियो भी सामने आ रहा। तेज हवाओं के बीच खड़ी ढलान पर हेलीकॉप्टर का एक हिस्सा टिकाकर एक मरीज को एयरलिफ्ट किया। लद्दाख के कारगिल क्षेत्र के पास स्थित नूनकुन पर्वत पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वाकई में इंडियन आर्मी को सैल्यूट यार। ये ऑपरेशन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तराखंड में राहुल गांधी के खिलाफ एक मामले को लेकर FIR दर्ज हुई। उन पर आरोप है कि शुद्धिकरण विवाद में SC ST एक्ट की धाराएं लगी। श्री राम सेना बोली कि दलितों का अपमान किया राहुल गांधी ने। मामला उत्तराखंड के हल्द्वानी के रामलीला मैदान का है, जहां जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभा की थी, उसके बाद कांग्रेस का कहना कि उस जगह का शुद्धिकरण किया गया। तो इसी मामले को लेकर जो राहुल गांधी ने बीते दिन कुछ उल्टी सीधी बातें कही, तो अब उन्हीं के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। देखिए आप। और अगली खबर देखिए दोस्तों, सितंबर से ही चीनी यानी शक्कर की बिक्री का नियम बदलने जा रहा। हालांकि सरकार ने जो हाल ही में कुछ पाबंदियां लगाई, उसके बाद कीमतों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन सितंबर से अब सरकार चीनी व्यापारियों के लिए लिमिट वगैरह लागू करने जा रही है और इम्पोर्ट आयात को लेकर भी टैक्स वगैरह फ्री कर दिया गया है। बढ़ती चीनी की कीमतों पर आम लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। अच्छा, वैसे चीनी पर यूपी की योगी सरकार ने भी बड़ी घोषणा की। उत्तर प्रदेश में BPL राशन कार्ड धारकों को राहत मिलेगी। राशन की दुकानों पर अब उन्हें 18 रुपए प्रति किलो की दर से चीनी मिलना शुरू हो जाएगी। तो चीनी के बढ़ते दाम और कीमतों के बीच ये राहत मिलेगी BPL राशन कार्ड धारकों को। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, तुर्की जा रही एक फेरी बोट समुद्र में पलटी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। 24 लोग अभी भी लापता हैं। टोटल 270 यात्री सवार थे इस बोट में। कई लोगों ने बोट के ऊपर चढ़कर जान बचाई। मेडिटेरियन सी में तुर्की जा रही है फेरी बोट की बड़ी घटना देखने को मिली। कुछ और अंतरराष्ट्रीय न्यूज के अपडेट देखिए। रूस यूक्रेन जंग पर बड़ी खबर आ रही। यूक्रेन में घरों के बीच छिपे हथियार डिपो पर रूस ने हमला किया, जिसके चलते कई गोला बारूद, बारूदी सुरंगे और ड्रोन वगैरह फट गए। इस हमले में अब तक 37 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 130 से ज्यादा घरों को भी नुकसान पहुंचा। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव के पास ये बड़ा हथियार डिपो पर ड्रोन हमला किया, इस वजह से भारी नुकसान पहुंचा। तो अमेरिका ईरान की जंग के बीच ये रूस यूक्रेन की जंग भी एक बार फिर से उग्र देखने को मिल रही है। और रूस यूक्रेन जंग पर एक रिपोर्ट आ रही कि हाल ही में रूस की जो रिफाइनरियों पर यूक्रेन ने हमले किए थे, उसका भी असर कुछ यूं दिखा। भारत ने बढ़ाई पेट्रोल सप्लाई, 2 महीने में भेजा 10 लाख बैरल तेल भी। पिछले 2 महीनों के अंदर अंदर भारतीय रिफाइनरियों ने रूस को करीब इतना पेट्रोल भेजा। उल्टा रूस को भारत की जरूरत बड़ी है अब। वहीं खबर है अमेरिका में परमाणु ईंधन बना डिफेंस की प्राथमिकता। यूरेनियम का प्रोडक्शन भी 3 गुना तक बढ़ा दिया गया है। और यूक्रेन में अब आजकल शादियां भी फ्रंट लाइन और ऑनलाइन हो रही। 38% इस साल की शादियां ऑनलाइन हुई। तो ये तो इंटरनेशनल अपडेट्स रहे। चलिए अगली खबर देखिए, टेक न्यूज से बड़ी खबर आ रही दोस्तों। अब चाइना सेना में भी तकनीक का इस्तेमाल करने जा रहा। रोबोट सैनिकों की फौज तैयार कर रहा चीन। भविष्य के युद्ध की खतरनाक तस्वीर सामने आई। जी हाँ, मतलब अब लड़ाइयों में इंसानी सैनिकों के साथ साथ रोबोट आर्मी भी ग्राउंड में उतारने की तैयारी में जुट गया है चाइना। और वहीं भारत की इकोनॉमी पर भी रिपोर्ट सामने आ रही कि अर्थव्यवस्था जो है वो वित्त वर्ष 2027 में 7.2% तक रह सकती है। भारत की GDP इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, घरेलू खपत अगर अच्छी रही तो इससे भारत की GDP वृद्धि दर को और बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि कोरोना, यूक्रेन युद्ध और टैरिफ के झटके भी झेल गई भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने वैश्विक संकटों के बीच भारत की आर्थिक मजबूती को लेकर ये बातें कही हैं। और सरकारी कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग पर भी अपडेट आ रहा कि अगर सरकार जो प्लान कर रही है उसके मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 4 हुआ तो 18 से सीधे 72,000 हो जाएगी बेसिक सैलरी। तो सरकारी कर्मचारियों को इससे काफी बेनिफिट होंगे। इसका पूरा गणित भी मैंने आपको बताया था कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी एड पे कमीशन लागू होते ही। DLS न्यूज चैनल पर काफी टाइम पहले मैंने एक वीडियो में आपको पूरा कैलकुलेशन समझाया था, राइट। वहीं टेक न्यूज से और खबर देखिए, वीडियो एडिटर्स और क्रिएटर्स के लिए बड़ा तोहफा। गूगल कंपनी लेकर आई जेमिनी ओमनी 1.1 फ्लैश AI मॉडल, और इस मॉडल में कई पावरफुल वीडियो क्रिएशन और एडिटिंग के फीचर्स जोड़े गए हैं, जो कि ऑनलाइन सोशल मीडिया क्रिएटर्स वगैरह के लिए भी काफी फायदेमंद होंगे। वहीं खबर देखिए, अब सोते सोते अनलॉक होंगे इन गेम रिवार्ड्स। गूगल कंपनी ने लॉन्च किया स्लीपिंग पिकाचू वाला स्पेशल फिटबिट एयर। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो नेपाल बाढ़ से जुड़े कुछ बड़े अपडेट। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 781 तक पहुंच चुकी है और 2,500 से 3,000 लोग अभी भी लापता है। एक रिपोर्ट ये सामने आ रही कि नेपाल बाढ़ में लोगों को खतरे का पता 7:30 बजे तक चला। जो सरकार की तरफ से अलर्ट भेजा जाता वो भी 1.5 घंटे बाद आया। और इस बीच नेपाल ने आरोप ये भी लगाया कि चाइना ने हमें पहले नहीं चेताया वरना सैकड़ों जाने बच सकती थी। और नेपाल बाढ़ के बीच ये खबर देखिए, नेपाल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंगों में भी 898 कर्मचारी फंसे। 6 इंच छेद कर पाइप से हवा पहुंचाई उन कर्मचारियों पर। बाढ़ में अब तक लगभग 800 मौतें हो चुकी हैं। और भारत भी इन हालातों में नेपाल की लगातार मदद कर रहा। देखिए नेपाल में कई भारतीय फोरेंसिक और टनल रेस्क्यू टीम भी तैनात हुई। शवों की पहचान के लिए DNA जांच में भी मदद करेगा भारत। और ये कुछ भावुक करने वाली तस्वीरें देखिए, नेपाल बाढ़ में साइट पर ही नूडल्स खाकर काम कर रहे हैं रेस्क्यू वर्कर्स। इतने गंभीर हालातों में खुद का खाना पानी छोड़कर लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटे हैं रेस्क्यू करने वाले जवान वगैरह। वाकई में सैल्यूट ऐसे लोगों को। देखिए नेपाल बाढ़ में रात भर जारी रहा टनल में भी रेस्क्यू, जहां 800-900 कर्मचारी अब भी फंसे हुए हैं। और ये एक व्यक्ति की दास्तां देखिए, जमीन के अंदर धड़ और सिर बाहर मलबे में मिला जिंदा आदमी, जिसको भी रेस्क्यू किया गया। ये भी नेपाल की बाढ़ में मलबे में फंस गया था। और नेपाल की मदद के लिए हमारे देश भारत से राजधानी दिल्ली की भी 23 संस्थाओं ने हाथ बढ़ाए, खून पसीने की कमाई से जुटाए 90 लाख रुपए और नेपाल को मदद के लिए दिए हैं। और एक रिपोर्ट ये सामने आ रही कि नेपाल बाढ़ में हमारे आंध्र प्रदेश राज्य के भी 13 लोग लापता हैं। 145 तेलुगु तीर्थयात्री कोडारी पहुंचे, ये भी रिपोर्ट और डेटा सामने आ रहा। ना सिर्फ नेपाल में बल्कि जहां चाइना से सटे तिब्बत में भी भूस्खलन आया, यहां भी अब तक 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि यहां भी 550 के लगभग अभी भी लापता है लोग बाग। वहीं भारत के कुछ राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। हिमाचल प्रदेश शिमला में ट्रेक हवा में लटका, 10 ट्रेनें भी कैंसिल हुई। चित्रकूट में लोग फंसे हुए हैं जिनका हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा। और राजस्थान के 17 जिलों में सूखे जैसे हालात भी देखने को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में देखिए, मेन हाट में बहे केरल के युवक की लाश मिली, युवती की जान बची। 5 दिन और तेज बारिश का अलर्ट रहेगा छत्तीसगढ़ में। कोरबा में बाढ़ की वजह से कई लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में कई जिलों में हालात कितने गंभीर चल रहे हैं। अच्छा, और अब देखिए मध्य प्रदेश के भी चित्रकूट में बाढ़ आई हुई है। 300 मीटर लंबा बड़ा पुल बह गया। उत्तर प्रदेश के 47 जिलों में बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश के तो चित्रकूट वगैरह का ये ड्रोन वीडियो देखिए आप, पूरा चित्रकूट जलमग्न हो चुका है। मंदाकिनी नदी तकरीबन 30 फीट उफान पर चल रही है। 700 लोगों का हेलीकॉप्टर और नाव के जरिए रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले कि बाढ़ काफी गंभीर है, आज वो यहां के हालातों का घटनास्थल का जायजा भी लेंगे। ये बाढ़ की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलग अलग जिलों में चित्रकूट वगैरह में MP में कितने हालात गंभीर चल रहे हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी तो 26 फीट उफान पर चल रही, मतलब इतनी ओवरफ्लो हो रही है। 300 फीट लंबा पुल भी बह गया। और अभी भी मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दरमियान मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। अच्छा, मध्य प्रदेश के बाद अब देखिए, पंजाब चंडीगढ़ में भी सुखना लेक का एक गेट खोला गया। इस मानसून सीजन में पहली बार पानी छोड़ा गया और अभी अगले 2-3 दिन मौसम का हाल कैसा रह सकता है देख सकते हैं आप जानकारी। वहीं उत्तराखंड में मौसम वैज्ञानिकों की चेतावनी आ रही कि ग्लेशियर जिलों के खतरे के बाद अब उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट मोड पर है। सेंसर और ड्रोन से इनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, ताकि भविष्य में अगर नेपाल जैसी बाढ़ वगैरह का खतरा हो तो उस आपदा के समय लोगों को बचाया जा सके, पहले इसका पता चल जाएगा। उत्तराखंड में मसूरी नैनीताल में एक पहाड़ी भी दरकी। इन खराब हालातों की वजह से गाड़ियों वगैरह का किराया भी ज्यादा वसूला जा रहा। वैसे अभी सभी जिलों में उत्तराखंड में बारिश वगैरह की चेतावनी है। कुछ जिलों में बाढ़ के हालात भी चल रहे हैं और लैंडस्लाइड की वजह से सैकड़ों सड़कें अभी भी बंद पड़ी हैं। और अगले 3 दिन 31 अगस्त-1-2 सितंबर तक उत्तराखंड में मौसम का हाल कैसा रहेगा जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं राजस्थान में अब 2 दिन बाद फिर से बारिश की चेतावनी। लगातार दूसरे दिन राजस्थान में मानसून सूखा रहा और अगस्त के अंत में तापमान भी 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। गर्मी बढ़ने लगी। राजस्थान के कई जिलों में सूखे का सामना कर रहे किसान भाई लोग अपनी फसलों को लेकर। हालांकि मौसम विभाग ने 2 सितंबर को राजस्थान के इन पूर्वी जिलों में बारिश की चेतावनी दी है। और वहीं हिमाचल प्रदेश के भी कई शहरों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट रहेगा, IMD ने एडवाइजरी जारी की। बाकी ऑल ओवर भारत में देखिए आप, मौसम विभाग ने ओडिशा राज्य में रेड अलर्ट जारी कर रखा है और कुछ राज्यों में जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल वगैरह में ऑरेंज अलर्ट है। और मध्य भारत के इन राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी है, लेकिन जो ग्रीन जोन इलाके वाले एरिया आप देख पा रहे होंगे, लगभग आधे भारत में बारिश की कोई संभावना नहीं है अगले 24 घंटों के दरमियान। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते खबरों में, कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, बीते सप्ताह जो भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली, इस वजह से रिपोर्ट आ रही कि भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 7 का मार्केट कैप 1,00,000 करोड़ रुपए तक घटा है, जिसमें एयरटेल कंपनी टॉप लूजर रही। और निवेशकों के लिए खबर है, IITN एरोस्पेस इंजीनियर ला रहा 680 करोड़ का IPO। 31 अगस्त से ये IPO ओपन होने जा रहा, तो आप आज से निवेश कर सकते हैं। वहीं रिपोर्ट आ रही कि फ्लेक्सी कैप फंड्स ने एक साल में 20% तक का रिटर्न दिया, इनमें निवेश करना कम रिस्की भी होता है। और खबर देखिए, ओपन AI के सह संस्थापक 10 कोडर के बराबर काम करते हैं आज भी। 80 घंटे कोडिंग करते हैं वो सप्ताह में, एजीआई का इनका लक्ष्य है। अभी जो जमाने में एआई चल रहा है, एजीआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो कि एआई के मुकाबले बहुत ज्यादा सुपर पावरफुल होगा, तो वो एआई एडवांस एआई बनाने का लक्ष्य है इनका। वहीं एक रिपोर्ट देखिए, 2965 लोगों ने एआई से ज्यादा इंसानी कला को चुना। एआई की चमक के बीच मानवीय निशान वाली कला पर लोगों का भरोसा और बढ़ा है। यानी जो लोग बाग आर्ट करते हैं, अपने हाथों से पेन कलर ब्रश से पेंटिंग बनाते हैं, तो उस पर लोग बाग आज भी ज्यादा बिलीव करते हैं। एआई के दौर में कला की कीमत अभी भी कायम है। चलिए खबर है, मेसी इवेंट के 33,000 दर्शकों का पैसा वापस लौटाया जाएगा। बंगाल के मुख्यमंत्री बोले कि स्पोर्ट्स बजट से ये रिफंड होगा। वीआईपी कल्चर को लेकर जो सवाल उठे थे, तो उसके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में, देखिए आप अगली खबर। भारत में एजुकेशन पर रिपोर्ट सामने आ रही कि उच्च शिक्षा का स्वर्णिम दशक चल रहा। अभी 31.5% तक बच्चों की पढ़ाई का नामांकन बढ़ा है। छात्राओं की भागीदारी में भी बड़ी छलांग देखने को मिली। यानी पिछले 10 सालों के अंदर अंदर बच्चे बच्चों को पढ़ाने की माता पिता में जागरूकता देखने को मिली है। वरना पुराने जमाने में कई लोग पढ़ाई नहीं करते थे, लेकिन आजकल की नई जनरेशन सब पढ़ रहे हैं ऐसा। वहीं देखिए मध्य प्रदेश की बदल रही है आर्थिक तस्वीर। एमएसएमई को कर्ज में 36.5% तक का उछाल देखने को मिला। 2 साल में 1.5 लाख करोड़ का ऋण हुआ मध्य प्रदेश सरकार पर भी। और दिल्ली के 5 सरकारी अस्पतालों में बढ़ेगी आईसीयू की सुविधाएं। 400 नए क्रिटिकल केयर बेड भी तैयार होंगे। दिल्ली सरकार ने इसको लेकर निविदा भी जारी की है। वहीं मध्य प्रदेश में आने वाले निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने नया दांव चला। हर जिले में बनेगी राजनीतिक मामलों की समिति। प्रत्याशी चयन पर भी नजर रहेगी। और पंजाब सरकार ने भी एमएसएमई और निर्यातकों यानी एक्सपोर्टर्स को बड़ी राहत दी। पंजाब के जालंधर में खुलेगी आधुनिक परीक्षण प्रयोगशाला, जहां कई उत्पादों की जांच हो पाएगी। और हरियाणा के किसानों के लिए खतरे की घंटी। हरियाणा में गन्ने की बंपर पैदावार देने वाली किस्म पर संकट छाया। वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि किसान भाई लोग अपनी फसलों के लिए नया बीज, नई रोग प्रतिरोधी किस्में अपनाएं, वरना आने वाले समय में गन्ने का उत्पादन और कम हो सकता है ऐसा। क्योंकि ये जो गन्ने की किस्म आती है, ये रेड राट बीमारी की चपेट में है, जिसमें गन्ना अंदर से लाल हो जाता है, तो फिर बाजार में वो बिकता नहीं, उसकी वैल्यू घट जाती है ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, झारखंड में कैदियों को मिलेगी बाहर जाकर काम करने की छूट। झारखंड राज्य की 4 जेलों में ये इस तरह का ओपन बैरक सिस्टम लागू करने जा रही सरकार। रांची समेत 4 केंद्रीय जेलों में ये व्यवस्था लागू होगी। और मेडिकल साइंस से अच्छी खबर देखिए, अब कैंसर के इलाज में नहीं होंगे कीमोथेरेपी के खतरनाक साइड इफेक्ट्स। हाल ही में वैज्ञानिकों शोधकर्ताओं ने नई स्मार्ट कैंसर मेडिसिन खोजी है, जिसके चलते कैंसर के इलाज के दरमियान जो कई अदर साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, बाल वगैरह जड़ जाते हैं कीमोथेरेपी में, तो इस तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे ऐसा। और महंगाई पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा में सीएनजी 3 रुपए तक महंगी हुई। कई जिलों में पुराने दाम पर मिलेगी हालांकि, लेकिन अधिकांश जिलों में ये भाव में बढ़ोतरी हो चुकी है 3 से 4 रुपए प्रति किलो की है। अभी एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कि राजधानी दिल्ली में भी सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है 3-4 रुपए की। उसके बाद अब आने वाले 9 सितंबर को ऑटो चालकों ने हड़ताल करने की चेतावनी भी दी है, क्योंकि इनका कहना है कि अगर फ्यूल ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही तो किराए भी बढ़ाए जाएं। ऑटो यूनियन ने ये सरकार से मांग की है ऐसा। वहीं महंगाई पर बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में अब 100 रुपए लीटर मिलेगा दूध। पशुपालकों ने बढ़ाए दाम। तय रेट से कम में बेचने पर 5100 रुपए तक का फाइन, जुर्माना भी लगेगा। तो हरियाणा के अधिकांश जिलों में दूध के दाम भी बढ़ चुके हैं। मुंबई वगैरह में भी कल 1 सितंबर से दूध महंगा हो जाएगा, मैंने आपको रिपोर्ट्स बताए थे। चलिए खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति यानी प्रमोशन की फाइलें अब नहीं अटकेगी। सरकार ने शिकंजा कसा और डिपार्टमेंट्स को नियमों की समीक्षा भी करनी होगी, क्योंकि कई सालों से प्रमोशन जो अटका हुआ, तो उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी अब। और खबर देखिए, उत्तराखंड की नई सहकारिता नीति युवाओं के लिए खोलेगी रोजगार और उद्यमिता के द्वार, और इससे राज्य में स्टार्टअप्स को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ये उत्तराखंड सरकार का नया प्लान है एमएसएमई रोजगार कारोबार व्यापार धंधे को बढ़ावा देने के लिए। चलिए कुछ यूपी के अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में पीएसी में बनेगी 3 महिला बटालियन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि अब बेटियां निभाएंगी नेतृत्व की भूमिका। यूपी की राजधानी लखनऊ में ये प्रतिमा अनावरण के दरमियान मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश के जैसे ही झारखंड में भी जेपीएससी का फर्जीवाड़ा देखने को मिला। सेटिंग वाले अभ्यर्थियों की ओएमआर में भरे जाते थे सही जवाब। सीआईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा किया है। झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं प्रतियोगिता परीक्षा में फर्जीवाड़े को लेकर, मतलब देखिए पेपर लीक के अलावा भी इस तरह के फर्जीवाड़े हो रहे हैं नौकरियों में। बेचारे शरीफ बच्चे तो कैसे पढ़कर नौकरी पा सकेंगे। वहीं खबर, आने वाले जन्माष्टमी के मौके पर यूपी मथुरा को बड़ी सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 446 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे यहां कान्हा के जन्मदिन के मौके पर। और उत्तर प्रदेश में स्वाइन फ्लू को लेकर भी अलर्ट मोड पर है स्वास्थ्य विभाग। सभी सीएमओ को निर्देश भेजे गए। आज सोमवार से अलग ओपीडी भी आयोजित की जाएगी ऐसे मामलों को लेकर। और उत्तर प्रदेश में 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए बसों में सेवा अब बिल्कुल फ्री हो चुकी है। QR कोड के माध्यम से स्कैनिंग की व्यवस्था भी होगी। यूपी परिवहन विभाग की तरफ से ये जो नई स्कीम शुरू करने की घोषणा की थी, तो इसको फाइनली लागू कर दिया गया है ऐसा। और खबर है दोस्तों, यूपी ईडा में सिटी में 400 औद्योगिक इकाइयों का निर्माण जारी है, 200 से ज्यादा में इसी साल उत्पादन शुरू हो जाएगा। तो नोएडा ईडा में भी अब ये औद्योगिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। वहीं देखिए, नोएडा में बनेगा ऑटो शोरूम हब, अब एक ही जगह मिलेगी कई ब्रांड की कारें, पार्किंग का झंझट भी खत्म होगा। नोएडा प्राधिकरण सेक्टर 105 में एक आधुनिक ऑटो शोरूम हब विकसित कर रहा है ऐसा। अच्छा, यूपी के बाद कुछ बिहार के अपडेट देखिए दोस्तों। बिहार में अब सामान्य ईडब्ल्यूएस और पिछड़ा वर्ग की बेटियां भी होंगी लाभान्वित। यूपीएससी या बीपीएससी क्रैक करने पर उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी इन एग्जाम्स को पास करने पर। ये बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। और देखिए, बिहार में फार्मर आईडी से मिलेगी अब किसानों को खाद, उर्वरक वगैरह। वैशाली, शेखपुरा के बाद बिहार के 5 और जिलों में भी इस तरह की ऑनलाइन आधारित व्यवस्था लागू हो चुकी है। और बिहार में बालू यानी रेत वगैरह भी सस्ती होगी, क्योंकि अगले महीने 150 से ज्यादा नए घाटों से खनन कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं देखिए, बिहार के स्कूलों में छात्र बनेंगे स्वच्छता दूत। कचरा प्रबंधन में अब स्टूडेंट खुद ही अहम रोल निभाएंगे। बच्चे बच्चों में साफ सफाई और सिविक सेंस को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार अच्छी पहल कर रही है। अब स्कूलों में गीले, सूखे और सैनिटरी कचरे का पृथककरण यानी अलग अलग जगहों पर उन्हें स्टोर किया जाएगा कचरे के रूप में ऐसा। वहीं बिहार में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में फेल नहीं होंगे छात्र। शनिवार को हाफ डे समेत और भी एजुकेशन से जुड़े कई नियमों में बदलाव करने जा रहा बिहार शिक्षा विभाग। तो शिक्षा मंत्री का कहना कि परीक्षा में उम्मीद के मुताबिक स्कोर न पाने वाले छात्रों को अब डायरेक्टली फेल नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें कौशल के लिए अपात्र माना जाएगा ऐसा। और देखिए, बिहार मधुबनी की हर पंचायत में खुलेगा जीविका सुधा केंद्र। महिलाओं को मिलेगा आत्मनिर्भरता का अवसर भी है। कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए। एक तो इस सप्ताह के कुछ टॉप गवर्नमेंट जॉब्स देख लेते। मैंने आपको बताया पोस्ट ऑफिस में लगभग 24 से 25 हजार पदों पर भर्ती निकली है। रेलवे में 1599 पदों पर वैकेंसी चल रही है। इस सप्ताह ऑल ओवर 27 हजार से भी ज्यादा भर्तियां निकली हुई है। तो इंडिया पोस्ट की रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन आज 31 अगस्त से शुरू होने जा रहे हैं। रेलवे में जो 1599 पदों पर भर्ती निकली, इसमें 26 तारीख से फॉर्म शुरू हो चुके, 15 सितंबर लास्ट डेट रहेगी। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के अंदर 12 सितंबर लास्ट डेट है ये भर्ती निकली हुई है। और बिहार में भी 259 पदों पर भर्ती चल रही है, लास्ट डेट रहेगी 24 सितंबर। हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक सेवा भर्ती की तारीख का अनाउंसमेंट हो चुका है, इसमें पद कमी है लेकिन लास्ट डेट 22 सितंबर रहेगी। तो ये तो कुछ टॉप गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह के अपडेट रहे। वहीं खबर है, मध्य प्रदेश पुलिस में 9662 पदों पर जल्द ही भर्तियां होगी। पीएचक्यू ने ईएसबी को इस बारे में प्रस्ताव भी भेजा। रिपोर्ट आ रही है कि इसी महीने सितंबर में प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी ऐसा। और हिमाचल सरकार का प्लान है, राज्य में 650 डॉक्टरों की भर्ती करेगी। सीएम सुक्खू बोले कि हमीरपुर में अलाइड हेल्थ सर्विस कॉलेज इसी सत्र से शुरू हो जाएगा ऐसा। वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि ड्राइवर और मजदूर जरा सावधान रहें, क्योंकि हर महीने 1000 मरीज जांच के दरमियान गंभीर बीमारियों से ग्रसित दिख रहे हैं। सिर और गर्दन के कैंसर ज्यादा हो रहे हैं। दिल्ली में ये चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है, क्योंकि मजदूरों की और ड्राइवर्स की गर्दन अक्सर ऑटो रिक्शा में टिकी हुई रहती है, इस वजह से ये गर्दन कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं ऐसा। वहीं देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले कि बिना मान्यता चल रहे मदरसे बंद होंगे, जारी रहेगा सहकारी भूमि से अतिक्रमण हटाओ अभियान। और जम्मू के प्रवासी शिविरों में बदलेगी तस्वीर, 5000 फ्लैटों के कायाकल्प पर 85 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में यूसीसी मुद्दे पर मुस्लिम समाज की बैठक होनी है, 1 सितंबर को रायपुर में जुटेंगे बुद्धिजीवी। और एक बड़ी घटना देखिए, छत्तीसगढ़ का यह मामला है, पत्नी ने बॉयफ्रेंड संग मिलकर पति को पिकअप से कुचलवा दिया, 1 लाख की सुपारी दी। इतने दिन एक्सीडेंट मान रही थी पुलिस, लेकिन उसकी मां ने अफेयर का राज खोला। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले का मामला है, मतलब देखिए आप, शादी को 13 साल हो गए, 3 बच्चे हैं और अभी ने लव शव हो रहे हैं और 1 लाख की सुपारी देकर अपने ही पति को मरवा दिया। यार क्या कहोगे ऐसी गंदी औरतों के बारे में। वहीं खबर है, मध्य प्रदेश में टीईटी के विरोध में शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली जा रहे शिक्षकों को बसों में रोकने का विरोध भी देखने को मिला। और खबर है, छत्तीसगढ़ में अब होम स्टे, होटल और सोशल मीडिया तक 10 कैटेगरी में मिलेगा टूरिज्म अवार्ड। विजेताओं को 11000 और मोमेंटो दिया जाएगा, 15 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार टूरिज्म यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये बड़ी घोषणा की है। इस ऑनलाइन ईमेल पर अपने आवेदन भेज सकते हैं इच्छुक उम्मीदवार। खेल जगत से खबर है, एशिया कप में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। दीप्ति ने बिना रन दिए 3 विकेट झटके। वीमेंस टी20 इंटरनेशनल की टॉप विकेटर बनी दीप्ति। मैनी कांग्रेट्स वुमेन्स टीम इंडिया को। वहीं देखिए, 15 साल की तन्वी ने भी जीता पहला सीनियर बैडमिंटन खिताब। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, कन्या राशि वालों की प्रॉपर्टी की योजना सफल होगी और कुंभ राशि वालों को अचानक धन लाभ भी हो सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का